आज अनु और अंतरा कितने खुश लग रहे थे ना। इस वक्त दृशांत और पल्लवी एक दूसरे की बाहों में समाये लेटे थे। पल्लवी ने बात छेड़ी, दृशांत ने भी हामी भरी। उन्हें पहले जैसे खुशी से चहकते देखकर मन को सुकून मिल गया था। बड़ी चिंता रहती थी मुझे उनकी कि उस घर में भेज तो दिया है, पर क्या कभी मेरी बहनों को वो खुशी मिल सकेगी जिसकी ख्वाहिश मैंने की थी उनके लिए। अंतरा की चिंता तो कम थी, क्योंकि मैं जानता था कि वो अपना हक छीनना जानती है। वो उस घर में सर्वाइव कर लेगी, अन्वय का पूरा साथ मिलेगा उसे। पर अनु की बहुत चिंता लगी रहती थी। जैसा स्वभाव उसका है, जैसा व्यवहार उसकी सास का था, उसके लिए ये सफ़र आसान नहीं होगा। बहुत कुछ सहना पड़ेगा उसे। पता नहीं उसके जीवन में कभी खुशियाँ आएंगी भी या नहीं। मैं अपने फैसले पर विचार करने लगा था कि कहीं अक्षय जी संग उसका विवाह करवाकर कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने। अपनी बहन का हाथ गलत शख्स के हाथों में तो नहीं सौंप दिया। अक्षय जी उसे वो मान सम्मान और खुशियां दे ही पाएंगे या नहीं जिसकी वो हकदार थी। पर आज मेरी सारी शंका दूर हो गई। दृशांत की आंखों के सामने आहाना और अंतरा का खुशी से ताज़े गुलाब सा खिला चेहरा उभर आया था। उसके चेहरे पर सुकून के भाव उभरे थे। दृशांत की बात सुनकर पल्लवी ने उसके सीने से सर बाहर निकालकर उसे देखा और खुद पर इतराते हुए बोली, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि अनु का रिश्ता अक्षय जी के साथ जोड़ने का फैसला बिल्कुल सही था। वो हमारी अनु के लिए बेस्ट चॉइस है। भले कुछ वक्त लगेगा, पर अक्षय जी सब संभाल लेंगे। वो हम सबकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और हमारी अनु का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उसे वो मान और खुशी देंगे जिस पर उसका हक है, और हमारी अनु उनके साथ सुखी रहेगी। देख लीजिए, आज वो अपने पति, बच्चों और परिवार संग सुख से जीवन व्यतीत कर रही है। और अब मुझे अक्षय जी से कोई शिकायत भी नहीं। उस वक्त मैं सिर्फ एक भाई बनकर सोच रहा था, पर अब बेटा बनकर सोचता हूँ तो एहसास होता है कि वो सब उनके लिए भी आसान नहीं रहा होगा। और जैसे उन्होंने परिस्थितियों का सामना किया, शायद वही सही तरीका था। उन्होंने हर रिश्ते को मौका दिया। घर की पहली संतान और बड़ा बेटा होने के नाते हमेशा उस परिवार को एक साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की, पर इन सब में पति का फर्ज निभाना नहीं भूले। वो एक अच्छे, काबिल, समझदार और जिम्मेदार बेटे के साथ अच्छे पति और पिता भी साबित हुए हैं। दृशांत के मन में अब अक्षय को लेकर कोई शिकायत नहीं थी। शुरू में अपनी बहन को सफ़र करते देखकर उसे अपने फैसले पर पछतावा होता था। अक्षय पर गुस्सा भी आता था कि उसकी चुप्पी के कारण आहाना को इतना सब सहना पड़ता है। उससे उसकी माँ को संभाला नहीं जाता, अपनी बीवी के प्रति अपना फ़र्ज़ नहीं निभा पाता। पर वक्त के साथ अक्षय ने उनकी सारी शिकायतें दूर कर दी थीं। दृशांत जैसे ही अपनी बात कहकर चुप हुआ, पल्लवी ने नाराज़गी से अपने गालों को फुलाया और खफा खफा नज़रों से उसे घूरते हुए तुनकते हुए बोली, बस अपने बहनोई की ही तारीफ के पुल बांधते रहेंगे या चंद शब्द अपनी इस बीवी की तारीफ में करने का कष्ट भी उठाएंगे? पल्लवी की बात सुनकर दृशांत चौंक गया और आँखें बड़ी बड़ी करते हुए उसे उलझन भरी निगाहों से देखने लगा। तुम्हारी तारीफ में? और नहीं तो क्या, मैं आपके लिए अपना घर परिवार छोड़कर नहीं आई। आप जैसे खड़ूस पति के साथ साथ आपके पूरे परिवार और शैतान बेटे को नहीं संभालती हूँ क्या? इन सब के बदले मैं आपकी थोड़ी सी प्रशंसा सुनने का अधिकार भी नहीं रखती? पल्लवी ने झूठ मूठ की नाराज़गी में मुंह फुलाया और उदास चेहरा बनाए मायूस निगाहों से उसे देखने लगी। दृशांत के चेहरे पर अब गंभीर भाव उभर आए। उसने उसकी बातों के बारे में गहराई से सोचते हुए जवाब दिया, बात तो तुम्हारी सही है, तारीफ़ के काबिल तो तुम हो। इधर आओ, कर देता हूँ तुम्हारी तारीफ, वो भी अपने स्पेशल अंदाज में। दृशांत इतना कहकर ठहर गया और खुद से दूर होकर बैठी पल्लवी की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों की चमक और लबों पर बिखरी मुस्कान देखकर पल्लवी खुद की ओर बढ़ते खतरे को भांप गई और तुरंत ही हाथ दिखाकर उसे अपने करीब आने से रोक दिया। नहीं, पास आने की जरूरत नहीं, दूर से ही तारीफ कीजिए, मैं सुन रही हूँ। ओहो, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। अब तुमने मेरे और मेरी फैमिली के लिए इतना कुछ किया है तो तुम्हारी मेहनत को सराहना मेरा फ़र्ज है। तुम्हारी प्रशंसा में मैं कोई कमी कैसे छोड़ सकता हूँ? दृशांत ने संजीदगी से जवाब दिया और उसकी हथेली को थामकर उसे झटके से अपनी ओर खींच लिया। एक तेज झटके के साथ पल्लवी उसके सीने से टकराई। उसने तुरंत पीछे हटना चाहा, पर दृशांत ने उसकी कमर पर अपनी बाँह लपेटते हुए उसे अपनी करीब खींच लिया। पल्लवी की घबराहट भरी निगाहें दृशांत की ओर उठ गईं। मुझे ना आपके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया मैंने कि तुम्हें मेरे इरादों पर ही शक होने लगा? दृशांत ने आंखों से उसे छेड़ा और उसके चेहरे की ओर झुकने लगा। इस दौरान पल्लवी की कमर पर उसकी पकड़ ढीली हुई, जिसका फ़ायदा उठाते हुए उसने अपनी कमर को उसकी बाहों के कैद से आज़ाद किया और उसे खुद से दूर करते हुए झट से बेड से उठ खड़ी हुई। उसने कुछ कहने को मुँह खोला ही था कि दृशांत ने उसकी कलाई थामते हुए उसे अपनी ओर खींच लिया। पल्लवी बिन डोर की पतंग जैसे उसकी ओर खींचती चली गई। उसकी हथेलियां दृशांत के कंधे पर आकर ठहरी और बड़ी बड़ी आंखें उसकी निगाहों से जा उलझ गईं। सीने में मौजूद दिल जैसे धड़कना ही भूल गया और अपनी कमर पर कसती दृशांत की बाहों के स्पर्श को महसूस करते हुए बदन में झुरझरी सी दौड़ गई। पल्लवी की चढ़ती उतरती सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए दृशांत हौले से मुस्कुरा दिया। थैंक यू पल्लवी, मुझसे इतनी मोहब्बत करने के लिए, मेरी जीवन साथी बनकर हर कदम पर मेरा साथ निभाने के लिए, मेरे परिवार को दिल से अपनाकर अपने परिवार जैसे उनका ख्याल रखने के लिए, मेरी बहनों की भाभी से पहले उनकी दोस्त बनने के लिए, मेरे छोटे भाई को अपने भाई जैसे संभालने के लिए, मेरे बेटे को जन्म देने के लिए, उसे अच्छी परवरिश देने के लिए। अगर तुम्हारा साथ नहीं होता तो ये सफ़र मेरे लिए इतना आसान नहीं होता। तुम्हारा प्यार और सपोर्ट मेरी सबसे बड़ी ताकत है। थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। उसके अल्फाज उसके मन के जज्बातों को जाहिर कर रहे थे। आंखों में कुछ अनकहे से एहसास हिलोरे मार रहे थे। पल्लवी पल भर को अपनी सुध-बुध गमाए अब पलक उसे देखती रही। फिर अचानक ही वो उसके मुँह जाल से बाहर निकली और नाक से कोरते हुए शिकायती लहजे में बोली, सब कुछ आपका है, मेरा कुछ भी नहीं। नाराजगी जाहिर कर रही थी वो और उसकी इस मासूम सी अदा पर दृशांत अपना दिल हार बैठा था। सौम्य सी मुस्कान उसके लबों पर आ ठहरी। ओहो, सब कुछ मेरा था पर अब हमारा है, मैं भी। पल्लवी उसका जवाब सुनकर मुस्कुरा उठी और उसके सीने से लग गई। दृशांत ने भी उसके माथे को चूमते हुए उसे अपनी बाहों में समेट लिया। अक्षय अपने दोस्त से बात करके कमरे में लौटा। उसकी नज़र बेड पर बैठी आहाना पर पाई, जो हाथ में डायरी और पेन लेकर बैठी थी। पर जैसे ही उसके कानों में दरवाजे के खुलने की आवाज़ पड़ी, उसने झट से पेन डायरी में रखकर डायरी बंद करते हुए साइड में रख दी और निगाहें बालकनी के दरवाजे की ओर घुमाई। उसकी निगाहें अक्षय की निगाहों से जा उलझ गईं। हो गई आपकी बात खत्म? सौम्य सी मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए आहाना ने उससे सवाल किया। अक्षय ने सहमति में सर हिलाते हुए जवाब दिया, हम्म। फिर कुछ पल ठहरते हुए उसने आगे बढ़ते हुए नजरें आहाना के बगल में सोए दोनों बच्चों पर डाली। बच्चे बड़ी जल्दी सो गए। अभी कुछ देर पहले तक तो दोनों शैतान मिलकर हुड़ंग मचा रहे थे और अब सो भी गए। वो हैरान था और बात भी हैरत की थी। अभी 10 मिनट पहले वो फोन आने पर उनके शोर से तंदा कर बालकनी में गया था, क्योंकि यहाँ तो दोनों कभी यहाँ कूद रहे थे, कभी वहाँ भाग रहे थे। जुबान नॉनस्टॉप चलती जा रही थी। आहाना उन्हें सुलाने की कोशिश कर रही थी पर उनकी शरारतें ही खत्म होने में नहीं आ रही थी और दोनों ने कमरे को जंग का मैदान बनाया हुआ था।
आहाना एक को पकड़ कर सुलाती वो दूसरा भाग जाता, दूसरे को लाती तो पहला वाला गायब मिलता, और जब वो तंग आ जाती तो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते। उन शैतानों को अपनी मम्मा को परेशान करने में बड़ा मज़ा आता था। कुछ मिनटों के लिए वो बालकनी में क्या गया, दोनों तूफान मेल न सिर्फ शांत हो गए थे बल्कि अब शरीफ बच्चे बनकर आराम से सो रहे थे। अक्षय की बात सुनकर आहाना ने निगाहें अपने दोनों नटखट बालकों पर डाली और उनके सर को अपनी हथेली से सहलाते हुए मुस्कुरा दी।